जीवन कहानी सच्ची खुशी की तलाश मार्टिन विटहोल्ड की जुबानी। मैं अपनी नाव पर सवार था और भूमध्य सागर के बीचों बीच था। अचानक नाव में पानी भरने लगा, फिर एक तेज तूफान आया। मैं बहुत डर गया, इसलिए मैं प्रार्थना करने लगा। लेकिन मैं इस नाव पर पहुंचा कैसे, आइए शुरू से बताता हूं। मेरा जन्म 1948 में नीदरलैंड्स में हुआ था। अगले साल मेरा परिवार ब्राजील के साओ पाउलो शहर चला गया। फिर 1959 में हम अमेरिका चले गए और मैसाचुसेट्स राज्य में रहने लगे। मेरे माता पिता चर्च जाया करते थे और हम सब रात के खाने के बाद अक्सर बाइबल पढ़ा करते थे। हमारे परिवार में 8 सदस्य थे, इसलिए हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए पिताजी को बहुत मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने कभी सेल्समैन की नौकरी की तो कभी सड़क बनाने की। फिर उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज कंपनी में नौकरी मिल गई। इस नौकरी से हम सब बहुत खुश थे क्योंकि हम अलग अलग जगह सफर कर सकते थे। जब मैं स्कूल में था तो सोचा करता था कि मैं बड़े होकर क्या करूंगा। मेरे कुछ दोस्त यूनिवर्सिटी चले गए तो कुछ सेना में भर्ती हो गए, लेकिन मैं सेना में नहीं जाना चाहता था क्योंकि मुझे लड़ाई करना तो दूर, झगड़ा करना भी पसंद नहीं था। इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी जाने का फैसला किया, लेकिन मैं दूसरों की मदद करना चाहता था क्योंकि मुझे लगता था कि इसी से मुझे खुशी मिलेगी। यूनिवर्सिटी में तलाश। यूनिवर्सिटी में मैंने मानव विज्ञान का विषय चुना क्योंकि मैं जानना चाहता था कि जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई। वहां में विकासवाद सिखाया जाता था। मुझे बहुत सी बातें बेतुकी लगती थी, फिर भी हम पर जोर डाला जाता था कि हम आंख मूंद कर उन पर विश्वास करें। यूनिवर्सिटी में हमें सही गलत के बीच फर्क करना नहीं सिखाया जाता था। इसके बजाय हमसे कहा जाता था कि हमें हर हाल में कामयाब होना चाहिए। मैं पार्टियों में जाया करता था और ड्रग्स भी लिया करता था। हालांकि मुझे खुशी मिलती थी, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। मैं सोचता था, क्या यही जीना है? फिर मैं बॉस्टन शहर चला गया और वहां की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा। अपनी फीस भरने के लिए मैं छुट्टियों में काम करने लगा। इसी दौरान मेरी मुलाकात यहोवा के एक साक्षी से हुई। वो मेरे साथ काम करता था। उसने मुझे दानियल अध्याय 4 में दी 7 काल की भविष्यवाणी का मतलब समझाया और कहा कि आज हम इस दुनिया के आखिरी दौर में जी रहे हैं। मैं समझ गया कि उसकी बातें सही हैं और अगर मैं उन्हें मानने लगूंगा तो मुझे खुद को बदलना पड़ेगा, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं उससे दूर दूर रहने लगा। मैं दक्षिण अमेरिका जाकर लोगों की सेवा करना चाहता था, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी में कुछ और कोर्स किए। मुझे लगता था कि समाज सेवा करके मुझे जिंदगी में खुशी मिलेगी, लेकिन इससे भी मुझे खुशी नहीं मिली, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। दूसरे देशों में तलाश। मई 1970 में मैं नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम शहर गया और उसी हवाई जहाज की कंपनी में काम करने लगा जिसमें पिताजी काम करते थे। इस नौकरी की वजह से मैं अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और एशिया के अलग अलग देशों में जा सका। उन देशों की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं थी, लेकिन किसी के पास उनका हल नहीं था। ये सब देखकर मुझमें जोश आ गया कि मैं कुछ करूं। इसलिए मैं दोबारा अमेरिका गया और बॉस्टन की उसी यूनिवर्सिटी में फिर से पढ़ने लगा। लेकिन मेरे मन में अब भी जिंदगी से जुड़े कई सवाल थे जिनके जवाब मुझे नहीं मिल रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसलिए मैंने इस बारे में अपने प्रोफेसर से बात की। उन्होंने मुझसे कहा, तुम क्यों पढ़ रहे हो, अपनी पढ़ाई छोड़ दो। बस ये सुनने की देर थी और मैंने तुरंत यूनिवर्सिटी छोड़ दी और फिर कभी नहीं लौटा। मेरी जिंदगी में खालीपन था, इसलिए मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ गया जो समाज के नियमों को नहीं मानते थे लेकिन प्यार और शांति का बढ़ावा देते थे। फिर मैं कुछ दोस्तों के साथ मैक्सिको के आकापुल्को शहर चला गया। वहां मैं हिप्पी लोगों के साथ रहने लगा जो किसी बात की चिंता नहीं करते थे, बेफिक्र रहते थे। लेकिन उनके साथ रहने के बाद ऐसा लगा कि उनकी तरह जिंदगी जीने से भी मुझे खुशी नहीं मिलेगी। वे लोग बेईमान और धोखेबाज थे। समुद्री सफर पर तलाश जारी। इस बीच मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बचपन का सपना पूरा करूं। मेरा सपना था कि मैं एक पानी के जहाज का कप्तान बनूं और पूरी दुनिया घूमूं। लेकिन ये तभी पूरा होता जब मेरे पास अपनी एक नाव होती। मेरा एक दोस्त था टॉम, उसका भी यही सपना था। इसलिए हमने सोचा कि हम दोनों मिलकर दुनिया की सैर करेंगे। हम एक ऐसा खूबसूरत द्वीप ढूंढना चाहते थे जहां हम समाज के नियम कानूनों से दूर होते। मैं और टॉम स्पेन के बार्सिलोना के पास एरिन्स दे मार नाम की जगह गए। वहां हमने 31 फुट लंबी नाव खरीदी जिसका नाम था लाइग्रा। हमने उसकी मरम्मत की ताकि हम समुन्दर पर सफर कर सके। हमें कहीं भी पहुंचने की जल्दी नहीं थी, इसलिए हमने उसका इंजन निकाल दिया और उस जगह पर पीने के लिए और पानी भर दिया। छोटे छोटे बंदरगाह तक पहुंचने के लिए हमने 16 फुट लंबे दो चप्पू भी खरीदे। इसके बाद हम हिंद महासागर में सेशेल्स द्वीप समूह के लिए निकल पड़े। हमने सोचा था कि हम अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप जाएंगे, फिर वहां से आगे जाएंगे। हम तारों को देखकर नक्शों, किताबों और छोटे छोटे यंत्रों का इस्तेमाल करके सही दिशा ढूंढ पाते थे। मुझे हैरानी होती थी कि इनके जरिए हम सही सही पता लगा पाते थे कि हम कहां हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमारी नाव समुन्दर के लिए नहीं बनी है। उसमें एक छेद था जिससे हर घंटे करीब 22 लीटर पानी भर रहा था, और जैसे कि मैंने कहानी की शुरुआत में बताया, तूफान की वजह से मैं बहुत डर गया था। मैंने कई सालों बाद प्रार्थना की और परमेश्वर से वादा किया कि अगर मैं बच गया तो मैं उसके बारे में जानूंगा। फिर तूफान शांत हो गया और मैंने अपना वादा निभाया। मैंने भूमध्य सागर के बीचों बीच बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। ऊपर खुला आसमान था और नीचे पानी ही पानी, ढेर सारी मछलियां उछल रही थी। और रात को जब मैंने बहुत सारे तारे देखे तो मुझे और भी यकीन हो गया कि एक ईश्वर है जिसे इंसानों की परवाह है। समुन्द्र में कुछ हफ्ते बिताने के बाद हम स्पेन के अलिकांटे बंदरगाह पहुंचे। हमने सोचा कि हम वहां अपनी नाव बेचकर एक दूसरी खरीद लेंगे, लेकिन हमारी पुरानी बिना इंजन वाली और छेद वाली नाव कौन खरीदता। मैंने सोचा कि जब तक कोई खरीदार नहीं आता तब तक मैं बाइबल पढ़ लेता। जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ने लगा मुझे एहसास होने लगा कि इसकी बातें मानकर हम खुश रह सकते हैं। मैं हैरान था कि बाइबल में कितना साफ साफ कहा है कि हमें नैतिक तौर पर शुद्ध जिंदगी जीनी चाहिए। फिर भी कई लोग खुद को ईसाई तो कहते हैं लेकिन बाइबल की बातें नहीं मानते। मैं भी उनमें से एक था। मैंने सोच लिया कि मैं खुद को बदलूंगा, इसलिए मैंने ड्रग्स लेना छोड़ दिया। मुझे यकीन था कि ऐसे लोग होंगे जो बाइबल के नैतिक स्तरों पर चलते हैं और मैं उनसे मिलना चाहता था। मैंने दूसरी बार परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा कि उन्हें ढूंढने में वो मेरी मदद करे। सच्चे धर्म की तलाश। मैंने सोचा कि सच्चा धर्म ढूंढने के लिए मैं एक एक करके सभी धर्मों को जांचूंगा। अलिकांटे की गलियों में घूमते वक्त मैंने देखा कि कई सारी धार्मिक इमारतें हैं लेकिन ज्यादातर पर मूर्तियां बनी थी। उन्हें देखकर मैं समझ गया कि वो धर्म सच्चे धर्म नहीं है। रविवार की एक दोपहर को मैं एक पहाड़ी पर बैठा था। वहां से बंदरगाह दिख रहा था। मैं याकूब 2:1-5 पढ़ रहा था जिसमें बताया गया है कि हमें अमीरों की तरफदारी नहीं करनी चाहिए। जब मैं अपनी नाव के पास लौट रहा था तो रास्ते में मुझे एक इमारत दिखी जो एक सभाघर जैसी लग रही थी। उसके दरवाजे के ऊपर लिखा था, यहोवा के साक्षियों का राजघर। मैंने सोचा, इन्हें परखता हूं, देखता हूं कि वे मेरे साथ किस तरह बर्ताव करते हैं। मैं फटी जीन्स पहनकर बिना दाढ़ी बनाए नंगे पैर ही राजघर में घुस गया। एक आदमी ने मुझे एक बुजुर्ग औरत के पास बिठाया। जब वक्ता आयतें बता रहा था तो उस औरत ने मुझे मेरी बाइबल में उन आयतों को ढूंढने में मदद दी। सभा के बाद सब लोग मुझसे मिलने के लिए आए। ये देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। एक आदमी ने बाइबल पर चर्चा करने के लिए अपने घर भी बुलाया, लेकिन तब तक मैंने पूरी बाइबल पढ़ी नहीं थी, इसलिए मैंने उससे कहा, आज नहीं, किसी और दिन। लेकिन मैं सभाओं में जाता रहा। कुछ हफ्तों बाद मैं उस आदमी से मिला जिसने मुझे अपने घर बुलाया था। उसने बाइबल से मेरे सवालों के जवाब दिए। एक हफ्ते बाद उसने मुझे बैग भरकर अच्छे कपड़े दिए। उसने बताया कि ये कपड़े एक भाई के हैं जो अभी जेल में है, क्योंकि उसने बाइबल की ये आज्ञाएं मानी कि एक दूसरे से प्यार करो और युद्ध ना करो। ये सुनकर मुझे यकीन हो गया कि मुझे जिन लोगों की तलाश थी वो यहोवा के साक्षी हैं, वो बाइबल के नैतिक स्तरों को मानते हैं। अब मैं एक खूबसूरत द्वीप नहीं ढूंढना चाहता था, बल्कि बाइबल के बारे में और जानना चाहता था। इसलिए मैं वापस नीदरलैंड्स चला गया। नौकरी की तलाश। 4 दिन सफर करने के बाद मैं नीदरलैंड्स के ग्रोनिंगन शहर पहुंचा। अपना गुजारा चलाने के लिए मुझे एक नौकरी चाहिए थी, इसलिए मैंने एक बड़े की दुकान में नौकरी की अर्जी डाली। उस अर्जी में एक सवाल था कि मेरा धर्म क्या है। मैंने लिखा, यहोवा का साक्षी। जब दुकान के मालिक ने वो पढ़ा तो उसके चेहरे के भाव ही बदल गए। उसने कहा, ठीक है, देखते हैं। उसने मुझे कभी नहीं बुलाया। फिर मैं एक दूसरी बढ़ई की दुकान पर गया। वहां के मालिक ने मुझसे पूछा कि मैंने कहां तक पढ़ाई की है और मुझे काम का कितना तजुर्बा है। मैंने उसे बताया कि मैंने एक लकड़ी की नाव की मरम्मत की है। हैरानी की बात है कि उसने मुझे नौकरी पर रख लिया। उसने कहा, आज दोपहर से काम शुरू कर देना, लेकिन एक शर्त है कि तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगे। मैं एक यहोवा का साक्षी हूं और बाइबल के सिद्धांतों के मुताबिक जीता हूं। मैंने हैरानी से उसे देखा और कहा, मैं भी यहोवा का साक्षी हूं। वो मेरे लंबे बाल और दाढ़ी देखकर समझ गया कि मैं साक्षी नहीं हूं। इसलिए उसने कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें बाइबल के बारे में सिखाऊंगा। मैंने उसकी बात झट से मान ली। अब मैं समझ गया कि पिछले दुकान मालिक ने मुझे नौकरी पर क्यों नहीं रखा। दरअसल यहोवा मेरी प्रार्थनाओं का जवाब दे रहा था। मैंने उस भाई की दुकान में 1 साल तक काम किया और बाइबल का अध्ययन भी किया। फिर जनवरी 1974 में मैंने बपतिस्मा ले लिया। आखिरकार तलाश खत्म हुई। 1 महीने बाद मैंने पायनियर सेवा शुरू कर दी। इस काम में मुझे बेहद खुशी मिलती थी। अगले महीने मैं एक नए स्पेनी भाषा बोलने वाले समूह की मदद करने के लिए एम्स्टर्डम चला गया। स्पेनी और पुर्तगाली भाषाओं में बाइबल अध्ययन चलाने में मजा आ जाता था। फिर मई 1975 में मुझे खास पायनियर बनाया गया। एक दिन इने के नाम की एक खास पायनियर बहन हमारी मंडली में आई। वो अपनी बाइबल विद्यार्थी को, जो बोलिविया से थी, स्पेनी भाषा बोलने वाले भाई बहनों से मिलवाना चाहती थी। इनके और मैं एक दूसरे को जानने के लिए खत लिखने लगे और हमें पता चला कि हम दोनों के लक्ष्य एक जैसे हैं। सन 1976 में हमारी शादी हो गई और 1982 तक हम दोनों ने खास पायनियर सेवा की। उसके बाद हमें गिलियड स्कूल की 73वीं क्लास के लिए बुलाया गया। क्लास के बाद हमें अफ्रीका के केन्या देश भेजा गया। हम सच में बहुत खुश थे और हैरान भी। हमने केन्या के मोम्बासा शहर में 5 साल तक सेवा की। फिर 1987 में हमें तंजानिया देश भेजा गया। वहां पहले प्रचार काम पर रोक लगी थी, लेकिन अब हट गई। हमने वहां 26 सालों तक सेवा की। इसके बाद हम दोबारा केन्या आ गए। लोगों को बाइबल के बारे में सिखाकर हमें सच में खुशी मिली। जब हम मोम्बासा में प्रचार कर रहे थे तो मैं एक आदमी से मिला। मैंने उसे 2 पत्रिकाएं दी। उसने कहा, इन्हें पढ़ने के बाद मैं क्या करूं। अगले ही हफ्ते हमने आप पृथ्वी पर पारादीस में सर्वदा जीवित रह सकते हैं किताब से अध्ययन शुरू कर दिया। कुछ ही वक्त पहले ये किताब उसकी भाषा स्वाहिली में प्रकाशित हुई थी। वो आदमी मोम्बासा में मेरा पहला बाइबल विद्यार्थी था। 1 साल बाद उसने बपतिस्मा ले लिया और पायनियर सेवा करने लगा। उसने और उसकी पत्नी ने करीब 100 लोगों को सच्चाई में आने में मदद दी है। जब मुझे पता चला कि मुझे जिंदगी में किस चीज से खुशी मिल सकती है, तो ऐसा लगा कि मैं उस व्यापारी की तरह हूं जिसे बेशकीमती मोती मिला था और उसे खोना नहीं चाहता था। मैं पूरी जिंदगी दूसरों की मदद करना चाहता था ताकि वो भी खुश रहें। मैंने और मेरी पत्नी ने देखा है कि यहोवा अपने लोगों को एक बढ़िया जिंदगी जीने में मदद करता है और उन्हें बेशुमार खुशियां देता है। लेख समाप्त।